ओम शांति, ओम शांति। सवेरे अमृत बेले को ये गीत चल रहा था कि भगवान से हमने मुलाकात की है, मधुर भावनी सी बात की है। तो मैं कुमारों के क्लास के बारे में कुछ बाबा के साथ बात कर रहा था, तो पॉइंट तो अलग अलग थी। तो बाबा ने मुझे टच किया कि बच्चे आज इन कुमारों को सुनाओ कि भगवान की मुलाकात कैसे होती है। वाकई मेरे बुद्धि में कुछ ये बात थी नहीं, लेकिन जैसे बाबा की टचिंग हुई, तो जैसे बाबा की टचिंग हुई वैसे जैसे उन लहरों में अमृत बेला कब पूरी हुई पता भी नहीं पड़ा। बहुत सुंदर, भगवान की हमने मुलाकात की है। भगवान की मुलाकात क्या चीज होती है, समझा? भगवान मुलाकात कैसे करते हैं? वैसे तो अव्यक्त रूप में मुलाकात होती है, उसे नयन मुलाकात कहा जाता है। क्या कहते हैं? नयन मुलाकात। बाकी भगवान की मुलाकात तो एक और बात होती है, समझा? मुझे वो बाबा का रूप भी याद आया कि जब हमने भगवान की मुलाकात की तो कैसे की? झोपड़ी में बाबा बैठे हुए थे, ऐसे ही टांग पर टांग चढ़ा करके, गोरा पान लाल बुंद चेहरा बाबा का, बाबा की चमकती हुई वो आंखें, स्वच्छ श्वेत वस्त्रधारी और चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान, एक प्रचंड जैसे पवित्रता का ओरा जो है, वो प्यूरिटी का ओरा बाबा के चारों ओर चमक रहा था। मस्तक वो भी बाबा का चमक रहा था, आंखें वो भी बाबा की चमक रही थी। तो ऐसे झोपड़ी में हम जा रहे थे, बाहर से आए थे बाबा को मिलने के लिए, तो भगवान की मुलाकात क्या होती है? भगवान जब मिलता है तो कैसे मिलता है? साकार में, साकार रूप धारण किया ना बाबा ने संगम के शुरू में, साकार में शिव बाबा आया, तो वो मुलाकात कैसे करता था? हम जो बाबा को अगर मिलने को जाना है मधुवन में, तो यहाँ एक साल तक पूरा ज्ञान में सारी धारणा करनी पड़ती थी, और पूरी धारणा एक साल करने के बाद फिर मधुबन से बाबा का परमिशन आता था कि भले बच्चे बाबा को मिलने के लिए आ सकते हैं। ये खुद बाबा जब परमिशन देता था तब ही बाबा को मिलने के लिए जा सकते थे। और बाबा को अगर मिलने को जाने का है तो हमारे पहले ब्राह्मणी को ही टेंशन आता था। एक तरफ तो उसको खुशी हो जाती थी कि बाबा ने बुलाया है, जिज्ञासु सारे खुश हो जाते थे। तो जैसे ही बाबा का पत्र आता तो ब्राह्मणी का काम शुरू हो जाता था। क्या काम शुरू होता था? तो ब्राह्मणी को पढ़ाई पढ़ाना शुरू करती थी। ब्राह्मणी बोलती थी, बाबा जो है ना, भगवान जो है बड़ा नियम वाला है भोला भाला, लेकिन कानून से चलने वाला है। बाबा कभी भी किसी के साथ, किसी से जब मुलाकात करते थे तो ऐसे ही मुलाकात नहीं करते थे। बाबा पहले टेस्ट करते थे कि ये मेरा बच्चा परफेक्ट है, ये पूरा निश्चय बुद्धि, पूरी ज्ञानी तो आत्मा है। ऐसा बाबा को जब कंफर्म होता था कि ये ज्ञानी तू आत्मा है, पक्का ब्राह्मण है, तभी बाबा उसको मिलते थे। वैसे बाबा मिलते नहीं थे। तो इसलिए क्या होता था, ब्राह्मणी सेंटर पर ही 10-15 दिन पाठ पढ़ाती रहती थी। जो पार्टी को लेकर के जाने का है उनको ये सिखाया जाता था कि बाबा को कैसे मिलने का है। और बाबा क्या करता था, अनेक सवाल पूछता था, और जब उन सारे सवालों का जवाब देंगे परफेक्ट, उसके बाद बाबा बच्चों को मिलता था। वैसे कच्चे बच्चों को बाबा नहीं मिलता था, इसीलिए बाबा क्या सवाल पूछेंगे ये ब्राह्मणी जिज्ञासुओं से पक्का कराती थी। वो बोलती थी कि देखो, जब अपन बाबा को तुम मिलने को जाएंगे ना, तो बाबा पूछेगा क्या कभी बाबा को मिले थे, समझा? तो अगर बाबा पूछेगा कभी मिले थे तो क्या जवाब देने का, 5000 साल पहले भी मिले थे, अभी भी मिले हैं, और 5000 साल के बाद भी मिलेंगे। ऐसे 8-10 सवाल जो है ना, वो ब्राह्मणी सारा पक्का करा करके लेती थी। और जब उसको कॉन्फिडेंस होता था कि ये अभी जिज्ञासु पक्के तैयार हो गए हैं, उसके बाद ये ट्रेनिंग सेंटर पर दिया जाता था 7-7 दिन कि बाबा के गोद में कैसा जाने का। क्योंकि बाबा जो मिलता था ना, तो बच्चों को अपने गोद में लेता था, समझा ना, सिर्फ ऐसी नयन मुलाकात नहीं करता था। अगर बच्चा है ना, कितने समय के बाद मिल रहा है, कितने समय के बाद बाबा को मिल रहा है, 5000 साल के बाद मिल रहा है, तो अगदी बाप मुलाला सी कौटन भेटतो ना अगदी। ऐसे बाबा एकदम गोद में गदगद गदगद करके बाबा ले लेता था, समझा? तो उसके पहले बाकी परीक्षा देनी पड़ती थी। तो बाबा के गोद में कैसा जाने का वो भी ब्राह्मणी सिखाती थी, कैसे पांव रखने का, फिर कैसे बाबा के नजदीक जाने का, फिर कैसे दो हाथों से बाबा को पकड़ने का, फिर ये हर एक ढंग सिखाती थी। और फिर जब ऐसे हम लोग गए तो मुझे बाबा से बहुत प्यार था, ब्रह्मा बाबा का जैसे परिचय मिला इतना प्यार था कि मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। जैसे पता पड़ा कि बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया है, तो तड़प थी कि कब जाकर के बाबा को मिलूं। तो हम कोर्स हुआ और 8-10 दिन में ही बाबा को मिलने को मैं गया था। बड़ी लगन होती थी और हमको बहुत अच्छे ढंग से सिखाया गया था कि बाबा माना स्वर्गाश्रम है, मधुबन क्या है, स्वर्ग है, मधुबन को स्वर्गाश्रम कहा जाता है, और स्वर्ग में फिर अभी ब्रह्मा के तन में बाबा आया हुआ है, तो मधुबन स्वर्ग है। ये पहले से फिक्स था कि वहां की गौवे भी क्या करती है, सवेरे जंगल में चली जाती है और बराबर शाम को आ जाती है और आकर के दूध देती है, उनके पीछे कोई भी नहीं होता है, तो ऐसा मधुबन है, उसका सारा वर्णन बुद्धि में था। तो इस प्रकार से हम जब आबू रोड में आए और हम बस में बैठे, उस जमाने में कच्चा रास्ता था, धूल बहुत उड़ जाती थी रास्ते में, तो कच्चा रास्ता और बीच में आधा घंटे का हॉल्ट होता था, क्योंकि आधा घाट चढ़ने के बाद गाड़ी गर्म हो जाती थी तो गाड़ी को ठंडा करना पड़ता था, इसीलिए आधा घंटा ठहरते थे। और वहां आधा घंटा ठहरने के बाद बहुत बंदर मिलने के लिए आ जाते थे, बहुत बंदर वहां पर आ जाते थे, उनको खाना मिलता था, तो आधा घंटा वहां ठहरते थे, फिर बाद में ऊपर जाते थे। तो जैसे हम आबू रोड से माउंट में चलना शुरू हुआ हमारी गाड़ी, बस में बैठे और बस में बैठ करके जा ही रहे थे, तो जाते 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 मुझे बहुत खुशी हुई, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरे सारा बगीचा, सारी झाड़ियां, ये देख देख करके इतने खुश होते थे। और क्या था रास्ता ऐसा ऐसा, तो मैं कहता था कि स्वर्ग का रास्ता देखो कैसा है, ऐसा जाओ ऐसा जाओ, फिर ऐसा जाओ ऐसा जाओ, कितना सुंदर स्वर्ग का रास्ता है। तो इस प्रकार से देख देख करके जब बाबा को मिलने का टाइम आया तो बहुत खुशी हुई। और बाबा क्या था, बाबा के अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, भले 40 व्यक्ति भी खड़े हो जाए और उसमें बाबा कहां कोने में भी होगा ना, तो कोने से भी आपको क्या करेगा, बाबा कशिश करेगा, ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी बाबा की थी। तो जब बाबा को झोपड़ी में मिलने को हम गए, तो हम गए तो बड़े खुशी से, बाबा ने पहले से सारा अरेंजमेंट करके रखा था। बाबा बहुत अच्छी अरेंजमेंट करते थे, आबू रोड में एक भूरी दादी थी, उसको भेजते थे पार्टी को लाने के लिए, वो आबू रोड पर आती थी और वहां से वो पार्टी को लेकर के मधुबन में लेके आती थी। तो जब बाबा को मिलने को आए तो सब फ्रेश होकर के गए, हम लोग भी फ्रेश होकर के स्नान आदि सब करके, हमारी टीचर ने कहा कि चलो बाबा को मिलना है। तो जब बाबा को मिलने को गए तो पार्टी सारी बाबा की, सात की पार्टी थी, तो सात की पार्टी झोपड़ी में बैठे थे, बाबा संदली के ऊपर नीचे बैठा हुआ था, गद्दी डाल करके बाबा नीचे बैठता था। और बाबा जैसे पार्टी आई, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, सभी बच्चों को बाबा ने बिठाया, और सभी बच्चे बैठने के बाद फिर बाबा ने पूछा, अच्छा फ्रेश हो गए हो? हम लोगों ने कहा हाँ बाबा फ्रेश हुए। अच्छा स्नान आदि सब किया है? हाँ बोले सब अच्छा स्नान किया है बाबा, कोई थकान तो नहीं रही है? सबने कहा कोई भी थकान बाबा नहीं, हम बहुत फ्रेश हो गए। अच्छा फिर बाबा ने कहा पहली बार ही आए हो? तो हम सभी ने कहा हाँ बाबा। तो हाँ बाबा कहने के बाद ब्राह्मणी बोली, अरे मैंने क्या सिखाया है? हम बोले नहीं नहीं बाबा, हम पहली बार नहीं, 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए हैं और 5000 साल के बाद भी आएंगे। तो ऐसे बाबा ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता था, गोल 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 करके बाबा ने पूछा, तो सब फेल हो गए। फिर उसके बाद फिर बाबा ने क्या किया, फिर बाबा ने कहा अच्छा, फिर बाबा ने कहा, हम लोगों ने कहा नहीं बाबा, हम 5000 साल पहले भी आए थे। अच्छा बाबा ने कहा आप 5000 साल पहले भी आए थे? हम लोगों ने सबने कहा हाँ बाबा 5000 साल पहले भी आए थे। फिर बाबा ने पूछा अच्छा इसी ड्रेस में आए थे? वो तो हमको सिखाया नहीं था, इसीलिए क्या हुआ हम सभी अपने ड्रेस देखने लगे कि भाई यही ड्रेस था क्या, दूसरा कुछ ड्रेस था? तो वो सब देखने के बाद फिर हमारी ब्राह्मणी बोली, मैंने क्या सिखाया? फिर हम बोले नहीं बाबा, इसी ड्रेस में आए थे। तो इस प्रकार से क्या होता था, बाबा हरेक से मना अनेक सवाल पूछते थे, और सब सवाल के जवाब जब देंगे फिर बाबा गोद में लेते थे। तो मैं ये पार्टी में सबसे छोटा था, तो मैं मुझे जब मिलने का मौका आया बाबा से, तो बाबा ने मुझे पूछा अच्छा बच्चे किसको मिलने को आए हो? तो मुझे तो पढ़ा करके रखा था, हमने कहा हम बाप दादा को मिलने को आए हैं। अच्छा बाबा ने कहा बाप दादा को मिलने को आए हैं? अच्छा दादा कहाँ है? तो मैंने कहा हमारे सामने बैठे है, ने कहा हमारे सामने बैठे। अच्छा बाबा ने कहा दादा सामने बैठे। अच्छा फिर बाबा कहाँ है? तो मैंने जड़ बाबा के भ्रुकुटी के बीच में अंगूठा रखा और कहा बाबा यहाँ है करके। तो वो भी याद आया मुझे कि वो इतना नशा था कि शिव बाबा ब्रह्मा के भ्रुकुटी में रहता है। तो दीदी भी बहुत बड़ी खुश हुई, मनमोहिनी दीदी उस समय थी। तो उसके बाद फिर बाबा के गोद में गए, तो जैसे ही बाबा के गोद में गए तो जैसे आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास, जन्म जन्मांतर की प्यास क्या हो गई, बुझ गई। भगवान को कितने जन्मों से पुकारते थे, क्या नहीं किया उनके लिए, कितने उनके मंदिर बनाए, कितने नदी के किनारे घाट बनाए, सारा पैसा सतयुग का बर्बाद किया, समझा, सारा ही समाप्त करके अभी कंगाल बन गए। तो बाबा को तो कई जन्मों से याद कर रहे, जब स्वयं बाबा को मिलना हुआ, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, हमारे पहले दिल्ली का एक व्यापारी बाबा को मिलने को आया था। पहले क्या होता था, जो भी काम धंधा आदि करते हैं तो उसका सारा पोता मेल साकार बाबा को सुनाया जाता था। तो बड़ा व्यापारी था तो बाबा को पोता मेल सुनाने, क्योंकि व्यापारी सुनाते थे बाबा को, बाबा इस साल में इतना जमा हो गया है, ऐसा ऐसा खर्चा हो गया है, अभी इतनी बचत रही हुई है, तो ये बचत का क्या करने का, तो बाबा उनको बताता था कि धंधे में इतना खर्चा करो, परिवार के लिए इतना खर्चा करो, सेंटर के लिए इतना रखो, यज्ञ के लिए इतना रखो, खुद के सेफ्टी के लिए इतना रखो, ऐसे पांच हिस्से करके बाबा उनको बताता था क्या क्या करने का है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरा व्यापारी बाबा को मिलने को आया, और दूसरा व्यापारी बाबा को मिलने को आया और उसने बाबा को कहा, क्योंकि वो दोनों तीनों साथ में आए थे, वो अकेला बाबा को मिलने को गया, तो उसने बाबा को कहा कि बाबा, माना शिव बाबा को कहते बाबा, तो बाबा मुझे आपसे प्राइवेट बात करनी है। बाबा को क्या कहा, मेरे को आपसे प्राइवेट बात करने की है। तो बाबा ने कहा, हे बच्चे, तुम मेरे से प्राइवेट बात कर ही नहीं सकते हो। तो उसको यह लगा, वही बाबा क्या कह रहे, बाबा ने कहा, हे बच्चे, कोई भी मेरे से प्राइवेट बात कर नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि बीच में ब्रह्मा सुन लेता है। भले शिव बाबा सुनाएगा, लेकिन बीच में कौन करेगा, ब्रह्मा सुन लेता है, इसलिए शिव बाबा से कोई भी प्राइवेट बात नहीं कर सकता है। तो ये भागीरथ की विशेषता थी कि शिव बाबा भले मुख से बात करे, ब्रह्मा बाबा कान से सुन सकते थे। और एक ही बात नहीं, सारा का सारा ब्रह्मा बाबा आराम से सुनते थे। इसीलिए तो डबल मुरली चलती है, मुरली में हमेशा कुछ महावाक्य शिव बाबा के होते हैं और कुछ वाक्य ब्रह्मा बाबा के भी होते हैं। तो क्योंकि बाबा तो सब सुनता है, शिव बाबा क्या क्या सुना रहा है, जैसे अभी अव्यक्त में गुलजार दादी अगर मुख से बोलेंगी तो उसको खुद को ही सुनने को नहीं आता है। दूसरे दिन जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, गुलजार दादी भी मुरली मंगाती है कि बताओ कल बाबा ने क्या कहा करके, तो उनको तो सुनना पड़ता है। ऐसे ब्रह्मा का नहीं था, वो तो जो शिव बाबा करेगा उसको अलाउड ही नहीं है प्राइवेट बात करने का, समझा, वो ब्रह्मा को सब समाचार मिल ही जाता था। तो वैसे जब हम लोग फिर बाबा को मिले, जब हम बाबा के गोद में गए, समझा, हमने आपकी मुलाकात की है, ऐसी मुलाकात की कि बस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। क्या हुआ, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ, जन्म जन्मांतर की आत्मा की जो प्यास थी वो प्यास बुझ गई, और कुछ मिनट के लिए ऐसा अनुभव हुआ कि ये सारा शरीर समाप्त हो गया, शरीर है ही नहीं, सिर्फ मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं और मैं वो दो चमकती हुए स्टार को देख रही हूं, एक शिव बाबा है, दूसरा ब्रह्मा बाबा है। तो ऐसे एक दोनों बिंदु का जैसे साक्षात्कार हो गया, और इतना अतीन्द्रिय सुख मिला, इतना सुख मिला कि जी नहीं चाहता कि ऐसे बाबा को पकड़ के ही रहे, और जैसा हमने बाबा को पकड़ा ऐसा बाबा ने भी हमको ऐसा पकड़ा कि बात मत पूछो। फिर उसके बाद फिर बाबा ने ऐसा ऊपर मुंडी कराया और वरदानों से झोली भर दी। बाबा ने उस समय वरदान दिया कि बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों भी महान है। तो ये जो वरदान है, ये वरदान भी बाबा दे देते थे बच्चों का, खाली मिलते ही नहीं थे, मुलाकात की है, भगवान से मन भावनी बात की है, उनसे बात भी की है, वरदानों से झोली भी भरी है। वो सारा सीन जो है ना, अमृत वेले है, मुझे वो सारा सीन याद आया। फिर भगवान की मुलाकात कैसे होती है समझा, वो ऐसी दिन रात खुशी से झोली भर दी, दिन रात खुशी खुशी नाचते रहते। एक बार बाबा के गोद में गए ना तो दिन भर नाचते रहते हैं। और भगवान कैसे मिलन मुलाकात कैसे करता है, इतना तो बाबा ने किया। फिर बाबा से मिले, बाबा ने मुख में टोली भी खिलाई और इशारा भी दिया। बाबा जो थे ना, बहुत मना, बाबा को समझना बहुत बड़ी बात होती है। इशारा भी किया, गोद में गए। जब गोद से बाहर आए तो बाबा ने कहा, हे बच्चे याद रखना, तुम बाप की गोद में आए हो, अभी कभी भी माया के गोद में नहीं जाना। समझा, कभी भी माया के गोद में नहीं जाना। तो उन वचनों से आज 52 वर्ष हो गए हैं, समझा, कभी भी हमको शादी आदि करने का संकल्प भी नहीं आया। तो क्योंकि वो बाबा का महावाक्य, बच्चे अभी हमारे मेरे गोद में आए हो, देखना कभी माया के गोदी में नहीं जाना। तो पवित्रता का जैसे बाबा ने क्या किया, ऐसे वरदान ही दे दिया, ऐसे वरदान भी बाबा दे देते थे। और भगवान मुलाकात कैसे करते थे, सिर्फ मुलाकात करके छोड़ते नहीं देते थे, ऐसी पालना करते थे कि बात मत पूछो। हम लोग बाबा को मिल करके बाहर आए, जो झोपड़ी है ना बाबा की, उसके बाजू में बहुत सुंदर बगीचा था, बहुत प्रकार के फूल जो है, बहुत प्रकार के फूल लगे हुए होते थे। तो बाबा झट बाहर आए, हम लोगों को मिलने के बाद बाबा बाहर आए और बाबा ने कहा, बच्चे फोटोग्राफर को बुलाओ, देखो, नहीं तो कईयों की दिल होती है कि हम बाबा के साथ फोटो निकाले। समझे, अभी जैसे आपने फोटो निकाला ना, ऐसे कईयों की दिल होती है कि हम बाबा के साथ फोटो निकाले। तो हमको कुछ समझ नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे जाओ फोटोग्राफर, अपना चंद्रराज दादा जो है, वो पहले उनके पास कैमरा होता था, तो चंद्रराज दादा गया अपने रूम में। और बहुत दिन बाबा फोटो निकालने का मना कर रहे थे, बाबा फोटो निकालने नहीं देते थे उन दिनों में, लेकिन हमारी पार्टी पर बाबा का बहुत एक्स्ट्रा प्यार था, क्योंकि हमारे पार्टी में मुस्लिम लोग भी थे, इसलिए बाबा का एक्स्ट्रा पार्ट था, प्यार बहुत था। तो बाबा ने कहा, बच्चे जाओ चंद्रास को बोलो कैमरा लेके आओ, और कैमरा लेकर के आने को कहा बाबा ने। और फिर बाबा खुद बीच में खड़े हुए और हम लोग बाबा के बाजू में खड़े होकर के हमारे साथ बाबा ने अपना फोटो भी खिंचवाया। समझा, खुद बाबा ने फोटो खिंचवाया। और ये कितना वंडर होता है, तो ये फोटो हमारे से गुम हो गया, कहाँ गया, जल्दी मिला नहीं, अभी ढूंढ रहे। लेकिन 2004 के प्यूरिटी के जनवरी के अंक में वो हमारा जो बाबा के साथ का फोटो था, वो प्यूरिटी में छप करके आया और सारे दुनिया में वो फोटो चला गया। तो भगवान की एक्शन कोई आज देख करके नहीं होती। मुझे जब मैंने वो जनवरी 4 के प्यूरिटी में जब बाबा के साथ हम लोगों का पार्टी का फोटो देखा, तो मुझे याद आया कि बाबा ने खुद ये फोटो खिंचवाया है। हमको तो इतना समझ में नहीं आया, बाबा ने खुद ये फोटो खिंचवाया है। तो आज 2004 के जनवरी में वो फोटो सारे दुनिया में चला गया है। तो भगवान का विजन जो होता है, वो बहुत बड़ा विजन होता है, वो कोई भी एक्ट करते उसमें बहुत बड़ा राज समाया होता है। वो फोटो निकाला, फिर वो गार्डन में जो झूला है ना, तो वो झूले के ऊपर बाबा बैठ गए और एक एक को बुलाया बाबा ने, दो दो हम बाबा के बाजू में एक लेफ्ट को एक राइट को बैठते थे और बाबा झूले में क्या करते थे, झूला हम लोग झूलते थे। तो झूला झूलाते झूलाते बाबा पूछता था, बच्चे किसके साथ झूल रहे हो, जा किसके साथ झूल रहे। तो हम कहते बाबा हम होनहार विश्व के महाराजा श्री नारायण श्री कृष्ण के साथ झूल रहे हैं। तो बाबा खुश होता था कि जो ज्ञानी सवाल होते थे बाबा के, तो उसके उत्तर भी बाबा ज्ञान के रूप में ही चाहते थे। हम सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी बाप के साथ झूल रहे हैं, तो बाबा और खुश हो जाते थे। हर बात में बाबा के ज्ञान समाया हुआ होता था। इतना क्या बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है कि कैसे कैसे बाबा ने पालना किया, बहुत प्रकार की। और एक बार रात को बाबा ने हमको बुलाया, साधारण 9 भोजन आदि ब्रह्मा भोजन हुआ था। बाबा क्या जैसे प्रातः क्लास करते थे वैसे मधुबन में रात्रि क्लास भी होता था, और मधुबन से दोनों मुरलियां छप करके आती थी, एक थी प्रातः क्लास और एक होती थी रात्रि क्लास। प्रातः क्लास की मुरली 3-4 पन्नों की होती थी और रात्रि क्लास की मुरली 1 पन्ने की होती थी। हाँ, टेंसिल से कभी लिखत से आता था। तो वो बाबा रात्रि क्लास करा थी। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को बाबा ने बुलाया। तो भगवान की मुलाकात क्या होती है, बाबा ने हमको बुलाया अपने कमरे में, जो ऑफिस है वहां पर बड़ा बाबा का कमरा था। फिर ईशू दादी बुलाया, उनकी बहन थी उनको, लच्छू दादी, लच्छू को बुलाया, मनमोहिनी दीदी थी, और बुला करके हम लोग आए, आओ बच्चे बाबा ने बुलाया। और हम बैठने के बाद बाबा ने कहा, बच्ची वो चुनरिया लाओ, समझा ना, चुनरिया मन अंगूठी, अंगूठियां जो है वो चांदी की अंगूठियां बाबा ने मंगवाई। तो वो ईशू दादी लच्छू दादी उन्होंने हम हरेक को कहा कि आपकी माप की निकालो। तो हम लोगों ने ट्रायल टेस्ट करके अपनी अपनी रख दी चुनरी निकाल करके। फिर उसके बाद बाबा आए, और बाबा आने के बाद फिर बाबा ने एक एक को चुनरी पहनाई, एक एक को क्या किया, वो चुनरी पहनाई। और चुनरी पहनाने के बाद वो अंगूठी डाली ना, तो अंगूठी डालने के बाद फिर बाबा ने हमको पूछा, बच्चे एंगेजमेंट पक्की हो गई, समझा, क्या पूछा, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट की अंगूठी डालते ना, तो भगवान के साथ एंगेजमेंट पक्की हो गई। तो सभी कहते हाँ बाबा पक्की हो गई। तो हर बात में जो है वो बाबा बच्चों को पक्का करवाता था। उसके बाद क्या है, ऐसे तो अनेक प्रकार की बाबा की पालना रही। बाबा ने क्या किया, हम लोग जब जा रहे थे कि कुमारों के कुछ पॉइंट सुनाने के, इसलिए मैं शॉर्ट में सुनाता हूं, कि हम लोग जब जा रहे थे, जाने का दिन आया, तो उसके पहले भी हम जब दोबारा दूसरी पार्टी में बाबा को मिलने को गए ना, तो उस समय तो बाबा का जो रूप था ना, उस समय बाबा का संपूर्ण रूप था। ब्रह्मा बाबा जो थे वो अपने संपूर्णता को प्राप्त किए हुए थे। 68 की बात है, 68 में जब बाबा को हम मिले तो, और मधुबन में उस समय जब जाते थे तो कम से कम 10 दिन रुकते थे, समझा, ऐसे आज के जैसे आए 2-4 दिन में चले गए, ऐसा नहीं, कम से कम 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 मास भी रुक जाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बाबा जो थे तो हम लोगों को उस समय देखा कि बाबा स्वयं, क्योंकि क्या हुआ, 68 की ही बात है, 68 जनवरी का ही मास था या 67 का दिसंबर का मास था, एक दिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा की एक संदेशी थी, मधुबन में 3 संदली होती है, अभी हिस्ट्री हॉल है ना, 3 संदली होती थी, एक संदली पर स्वयं बाबा बैठता था, दूसरी संदली पर मम्मा बैठी थी और तीसरी संदली पर संदेशी बैठी थी बाबा की। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुवार का दिन था, भोग लगाया मधुबन में और भोग लेकर के संदेशी बाबा के पास गई, अव्यक्त बाबा के पास गई। तो वो जाने वाली थी गुरुवार के दिन, तो उस दिन ब्रह्मा बाबा ने संदेशी को जाते समय एक बात बताई थी। ब्रह्मा बाबा को और कुछ विशेष बात करनी होती थी तो बाबा कभी कभी संदेश भेजते थे। तो बाबा ने संदेशी को कहा कि हे बच्ची, अभी आप वतन में जाएंगी तो वतन में जो संपूर्ण अव्यक्त बाबा है, वतन में तो अव्यक्त बाबा है, तो तू जाकर के देखना कि वो बाबा और ये यहां बैठा हुआ बाबा, समझा, वो बाबा और ये बाबा दोनों में अंतर क्या है, क्या है दोनों में अंतर क्या है, ये मुझे आकर के सुनाना। तो वो संदेशी को काम दिया था, तो वो ट्रांस में चली गई, भोग लेकर के ऊपर चली गई, बाबा से अव्यक्त बाबा से मुलाकात आदि किया और फिर भोग लेकर के नीचे आई। फिर उसने बाकी समाचार तो सुनाया और उसके बाद फिर ब्रह्मा बाबा ने उसको पूछा कि बच्ची तूने क्या देखा। तो उसने सुनाया, बोले बताओ मुझे कि वो बाबा और ये बाबा में क्या अंतर है। तो उसने, वो चुप बैठ गई संदेशी, तो चुप बैठ गई, एक दो मिनट चुप बैठी। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची सुनाओ ना क्या अंतर है। तो फिर उसने कहा कि बाबा बहुत अंतर है। क्या कहा, बहुत अंतर है। तो बाबा को एकदम ये हुआ, बोले क्या, क्योंकि वो ऊपर वाला जो बाबा है ना वो बहुत चमकने वाला है। क्या है, वो बहुत चमकने वाला है, उसकी आंखों में बहुत बड़ा तेज है और उसके पास लाइट लाइट बहुत है, और जितनी उनके पास है उनकी इतनी ये ब्रह्मा के पास नहीं है। इनके पास भी लाइट है, आपके पास भी, लेकिन उसकी ज्यादा है, या उसकी ज्यादा लाइट है। तो वो जैसे ही दोनों में अंतर है ये बाबा ने सुना, उस दिन से बाबा ने अपना सारा व्यवहार चेंज किया। बाबा जैसे संपूर्ण ब्रह्मा बनने का बाबा का पाठ शुरू हुआ, तीव्र पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का उस समय शुरू हुआ। रात दिन बाबा उसी मस्ती में मस्त थे, रात दिन शिव बाबा की याद में ही बाबा मस्त रहते थे। तो उन दिनों क्या होता था, बाबा स्वयं अमृत बेले का योग कराते थे, नहीं तो बाबा कभी भी डायरेक्ट योग नहीं कराते थे। लेकिन वो 68 के दिन थे कि जिन दिनों में बाबा स्वयं अमृत बेले का योग कराते थे, और बड़े एक्यूरेट एंड अलर्ट, अलर्ट एंड एक्यूरेट बाबा रहते थे। 4:15 बराबर बाबा एसटी हॉल में आ जाते थे और संदली पर बैठ जाते थे। वैसे बाबा बिल्कुल एक्यूरेट और अलर्ट भी थे। वैसे बाबा 6:00 मुरली चलाते थे, तो 6:00 मुरली चलाने के लिए जब बाबा क्लास में आते थे एसटी हॉल में, तो क्या होता था, उस समय एक चाइनीज घड़ी मधुबन को किसने दिया था, और चाइनीज घड़ी में क्या था, एक चिड़िया होती थी, और समझो 3 बजा है तो चिड़िया बाहर आती थी और 3 बार चू 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 करती थी, अंदर जाती थी। तो बराबर 6 बजता था ना, तो बाबा एसटी हॉल के दरवाजे में खड़ा होता था और चिड़िया बाहर आकर के 6 बार चू 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 करती थी और बाबा नीचे खड़ा होता था, इतना बाबा एक्यूरेट था। तो अमृत बेला के लिए बाबा आकर के आसन पर बैठ जाते थे, और जब बाबा स्वयं अमृत बेला करते थे तो इतना लाइट इतना लाइट इतना माइट, सारे हॉल में लाइट माइट, और ऐसे अनुभव होता था कि सारा हॉल के हॉल ऊपर उड़ गया है, नीचे किसी को वासना ही नहीं आती, सबके सब जैसे ऊपर उड़ गए, सारा इख्तियार ऐसा ऊपर उड़ गया है, ऐसा अनुभव होता था। बाबा जिसको दृष्टि देता था और देते ही वो आत्मा अशरीरी हो जाती, कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं, बस बाबा ने दृष्टि दिया, सारा देह भान भूल जाता था, बिल्कुल अशरीरी आत्मा बन जाते थे। और बाबा क्या करता था, दृष्टि दिया तो आत्मा को खींचता भी था, ऐसा जबरदस्त खींचता था, हर एक को बाबा के प्रति खींच होती थी। और कई माताओं का ऐसे होता था कि वो खींचना उनको सहन नहीं होता था तो भाग के वो आती थी, बाबा बाबा चिल्ला करके बाबा के गोद में बैठ जाती थी, क्योंकि बाबा कशिश करता था, फिर गोद में बैठने के बाद बाबा उनके सिर पर हाथ रखता था, फिर वो देह में आ जाती थी, क्योंकि उनको देह में लाना चाहिए, एकदम विदेही बन गई तो बाबा उसको नीचे लाते थे, फिर बाबा चलते फिरते याद की यात्रा सिखाते थे। अभी हम लोगों ने ड्रिल किया ना, फरिश्ते का ड्रिल किया, ऐसे साकार बाबा स्वयं सिखाते थे कि अशरीरी होकर के कैसा एक 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 कदम डालने का, वो बाबा ने स्वयं ब्रह्मा बाबा ने सिखाया मधुबन में। ऐसे बाबा फरिश्ते का स्वरूप की ड्रिल भी बाबा ने, भगवान ने आकर के मनुष्य को जीने की रीत सिखाई, भगवान ने आकर के मनुष्य को जीने की रीत सिखाई, कैसी सिखाई, तो मनुष्य के शरीर में आकर के सिखाई कि बोलना कैसे होता है, बैठना कैसे होता है, चलना कैसे होता है, खाना कैसे खाना होता है, नींद कैसे करना होता है, ये हर एक चीज बाबा ने बच्चों को सिखाई। उस समय क्या हुआ था, जगदीश भाई दिल्ली से आए हुए थे, तो जगदीश भाई पांडव भवन में आए हुए थे और बाबा के प्रति तो उनका बड़ा प्यार था और बाबा का भी उनके प्रति बहुत प्यार था। तो हम लोगों ने देखा, हम चौक में खड़े थे पांडव भवन के, तो जगदीश भाई गेट से जैसे अंदर आए सामान गया, तो जगदीश भाई का चौक में आना और बाबा भी जो शांति स्तंभ है वहां कोर्ट यार्ड था टेनिस का, तो वहां से बाबा चौक में आ रहे थे और गेट से जगदीश भाई चौक में आ रहे थे, दोनों की बीच में क्या हो गई, मुलाकात हुई। अभी जगदीश भाई ने स्नान आदि कुछ किया नहीं था, ऐसे ही आए हुए थे, लेकिन बाबा ने जैसे ही जगदीश भाई को देखा, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, भागते भागते जैसे जगदीश भाई बेचारे डर रहे थे क्योंकि फ्रेश नहीं, लेकिन बाबा ने क्या किया, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, ऐसा आकर के बुलाया और ऐसा बाबा ने उनको गोद में लिया और बाबा ने कहा, गॉड इज वन एंड जगदीश इज वन। क्या कहा बाबा ने, गॉड इज वन एंड जगदीश इज वन। तो कितना माना बाबा ने रहस्य युक्त वचन जो है, और सचमुच जगदीश इज वन ही है, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो वो उस समय वरदान माना, हमको मुलाकात की है, हमने भगवान से मुलाकात की है, तो वरदानों से झोली उन्होंने भर दी है। खाली मुलाकात नहीं करता भगवान, साथ साथ क्या करता है, वरदान भी देता है, तो वरदान भी उनको बाबा ने दिया। फिर हम लोगों का जब जाने का टाइम आया, जाने का पार्ट आया, तो बाबा चौक में आ जाते थे, गो सुन कम सुन की टोली देते थे, जिसमें इलायची होती थी और शक्कर होती थी, ये गो सुन कम सुन की टोली, इलायची में सुगंध है समझा ना, और मिठास है, खड़ी शक्कर में मिठास है, तो दोनों मिठास और सुगंध दोनों भी जाते समय बाबा बच्चों को देते। तो बाबा ने हम लोगों को वो गो सुन कम सुन की टोली भी खिलाई। और चौक से क्या होता था, पहले बाहर के गेट से नहीं जाते थे, बीच का शॉर्टकट होता था ना, तो शॉर्टकट से जाते थे, क्योंकि पहुंचाने के कोई साधन नहीं होते थे, मधुबन को अगर उतरते थे माउंट आबू को तो सर पर गठरी लेकर के समझा, और ट्रंक बिंक एक हाथ में बिस्तरा ऐसा लेकर के पांडव भवन को जाना पड़ता था। कोई भी साधन नहीं था तो शॉर्टकट से जाते थे। तो हम लोग जाने को जब पार्टी निकली बाबा चौक में आए, बाबा ने एक एक को ऐसी दृष्टि दिया जैसे अशरीरी हो गए। बच्चों को गो सुन कम सुन कहा और बाबा चौक में खड़े थे। हम लोग जा रहे थे सामान लेकर के, तो बाबा ने क्या किया ऐसे रुमाल निकाल करके, अच्छा बच्चे अच्छा बच्चे अच्छा बच्चे, गो सुन कम सुन, बाबा रुमाल हिला रहा है। हम लोग जा रहे, हम पीछे देख रहे आगे देख रहे पीछे देख रहे, आगे जाने को जी नहीं चाह रहा था। तो हम भी थोड़ा आगे देख रहे थे, चार कदम गए के फिर पीछे देखते थे तो बाबा रुमाल ही रहा। फिर हम लोगों ने देखा कि लास्ट तक हम आए तो क्या हुआ, बाबा को भी रहा नहीं गया, बाबा भी हमारे पीछे पीछे हमारे पीछे 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 आया। वो जो वड़ का झाड़ है ना नीचे, वहां तक बाबा विदाई देने के लिए आया था। माना कितना प्यार था, क्या साधारण बच्चे, लेकिन भगवान का, भगवान की मुलाकात क्या होती है, समझा, उनका मिलन क्या होता है, उनकी विदाई क्या होती है, समझा। बस लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा ठप्पा जो है ना, बहुत बड़ा ठप्पा लगाती है। रमेश भाई बड़े ज्ञानी, बहुत डिग्री ऊंचे पढ़ाई किए हुए, ज्ञान का उनको बहुत ये था, वो एक गुरु के चेले भी थे, तो उनको बहुत ज्ञान सुनाया तो समझा नहीं, समझा। तो बाबा ने रमेश भाई को कैसा ज्ञान में लाया, समझा, बाबा ने उनको ज्ञान में लाया। कैसा लाया, तो जब उन्होंने बंबई को माँ की गुरु ऐसा वो समझते थे, शांता माता उनकी माँ थी तो उनके ये गुरु है इस भाव से वो देखते थे। तो माँ ने बुलाया है बाबा को, तो उन्होंने भी बाबा की सेवा की बड़ी प्रेम से, लेकिन ज्ञान समझा नहीं था। तो जब जैसे बाबा ने कहा आपने मुझे बंबई बुलाया तो मैं भी आपको माउंट आबू को बुलाता हूँ, बाबा ने भी निमंत्रण दिया, तो बाबा ने निमंत्रण दिया इसलिए ये भी गए परिवार के साथ मधुबन में, मिले वगैरह सब कुछ हुआ। तो उनके ऊपर ऐसा खास कुछ असर नहीं हुआ था, क्योंकि दिमाग था ना, क्या था, दिमाग वालों को भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, दिल वाले झट पहचान लेते हैं, दिमाग वाले नहीं पहचानते, समझा। तो दिमाग वाले थे, तो दिमाग वाले होने के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, जब उनको विदाई लेने का टाइम आया और बाबा से गो सुन कम सुन की वो टोली ले रहे थे, विदाई बाबा से ले रहे थे, तो विदाई लेते लेते उन्होंने बाबा की दृष्टि लिया, और जब वो बाबा की दृष्टि ले रहे थे, जब बाबा की दृष्टि ले रहे थे तो उस समय उनको बाबा के आंखों में आंसू नजर आए। क्या नजर आया, बाबा के आंख में आंसू नजर आए। तो वो बाबा के आंख के अंदर के आंसू देख करके इनका हृदय पिघल गया, समझा, इनका पूरा हृदय पिघल गया, और उन्होंने रियलाइज किया कि ये कोई सामान्य आत्मा, ये कोई सामान्य नहीं, ये तो महान असामान्य है, और इनको समझने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा पहला धक्का जो है ना वो उनको जाते समय लग गया, और जाने के बाद उन्होंने कोर्स किया सारा ज्ञान समझ के लिया। तो ये कब, ये किस आधार से हुआ, तो बाबा के दृष्टि, दृष्टि से, अरे ब्रह्मा ने तो दृष्टि से सृष्टि बनाई है, क्या है, दृष्टि से सृष्टि बना। तो एक को देवता बनाना क्या मुश्किल है, क्या है ना, फट करके बना दिया, एकदम करंट ऐसा मार दिया कि घायल हो गया है ना, ऐसा पूरा घायल कर दिया। तो भगवान की नजर जो होती है ना, उनकी नजर भी बड़ी काम करने वाली नजर होती है, सारी ताकत उनकी नजरों में समाई हुई होती है। तो इस प्रकार से भगवान की मुलाकात जो है वो सारे जीवन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, सारे जीवन को परिवर्तन कर देती है। तो हम सभी परम भाग्यशाली है, और उसमें कुमार तो बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली है, जैसा कहते हैं ना, एक कुमारी सौ ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, और एक कुमार सात कुमारियों से श्रेष्ठ है। तो एक कुमार इज इक्वल टू 700 ब्राह्मण, समझा ना। तो इतने ब्राह्मण के बराबर क्या है, एक एक कुमार है, इसलिए कुमार बहुत कम होते हैं, समझा ना। ज्ञान मार्ग में कुमार बहुत कम होते हैं, और कुमार की आयु भी बहुत कम होती है। आप ऑब्जर्वेशन करो क्लास में, क्लास में माताएं कितनी चलती है, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन माताओं की संख्या बढ़ती जाती है। उनको ज्यादा तकलीफ नहीं है ज्ञान मार्ग में चलने में, युगल है उनको भी तकलीफ नहीं, क्योंकि दो व्हील की गाड़ी है, आराम से रास्ते पर चल जाती है। युगल भी चलते हैं, माता भी चलती है, कन्याओं को भी इतना तकलीफ नहीं है। थोड़ा कोर्स किया, थोड़ी सेवा की कि सेंटर पर रहना शुरू होता है, और कुमार सालों साल बाल सफेद हुए तो भी सेंटर पर अलाउड नहीं है, समझा। बहुत मेहनत कुमारों को क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ज्ञान मार्ग में। इसीलिए क्या है, कुमारों का टिकना बहुत मुश्किल रहता है। आप किसी भी क्लास में जाकर के संख्या देखेंगे ना, कभी क्लास में देखते 50-60 कुमार, और दो साल के बाद जाओ तो 15-20 बच्चे, इतने सारे, अरे कहां गए, समझा ना। एक बार इतना सारा कुमारों का क्लास भरता था, हमने भोसरी में देखा सैकड़ों कुमार होते थे, हम भट्टी कराने जाते, तो कितने गए बात मत पूछो। कोल्हापुर में हम जाते थे, 200-200 कुमारों की भट्टी कराते थे, समझा, कितने गए बात मत पूछो। एक बार दादी को हमने कहा, दादी इतने कुमार थे अभी वो चले गए, तो दादी ने कहा, कौन कहता है चले गए, कहाँ गया, कुमार गया कहाँ, चले गए कहाँ गया, बोले जाएगा और संख्या बढ़ा करके वापस आएंगे। जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, समझा ना। योगिता योगेश वगैरह घून आना तो परत, समझा ना। जाएंगे कहाँ, जा नहीं सकता है, समझा ना। आया तो अकेला था, पर अभी आया तो चार को लेकर के आया, तो जाएगा कहाँ, लेकिन उस लिस्ट में नहीं आना है, समझा। यहाँ तो सारे पक्के कुमार है, संख्या मत बढ़ाओ, पक्के कुमार बनो। कुमारों को क्या है, वैसे कुमार लाइफ इज वेरी बेस्ट लाइफ, कुमार लाइफ में कोई बंधन नहीं है। कन्या होंगी घर में तो उसको कहेंगे साच्चा आत, घर आतील पाई जी, क्या साच्चा आत, जैसे कुमार रात्रि बारह लाला तरी को नहीं परवा करत नहीं, त्याला कोणी जेवलं का नाही हे विचारत नाही, रात्री झोपला का नाही ते कोणी काही विचारत नाही, तोच सकाळी आपलं म्हणतो चहा द्या म्हणून। ते कुमाराचं काही एवढं विशेष नसत, परंतु साकार मध्ये बाबा जे होते, बाबा जो था ना, तो बाबा का एक विशेष था कि मधुबन में सोने का गीत बजता था, क्या, सोजा राजकुमारी सोजा। तो जैसे सोजा राजकुमारी सोजा, तो सभी बिस्तरे में क्या हो जाते थे, लेट जाते थे, दूध मिलता था रात्रि क्लास वगैरह होने के बाद, जब सोने को जाने का है तो बड़ी कढ़ाई रखी रहती थी, और बड़ा दूध, गरम गरम दूध, और पक्के गाय का दूध होता था गरम, सबको एक बड़ा बड़ा लोटा मिलता था, बड़ा बड़ा लोटा दूध, और आराम से लोटा भर दूध पीने का और बिस्तरे पर जाकर सोने का। सोजा राजकुमारी सोजा, तो ऐसे सो जाने के बाद 10 बजे सोए तो 10:30 बजे बाबा आता था हर एक कमरे में जहां बच्चे सोए हुए हैं ना। तो क्या होता था, पहले दो बहनें आती थी कि धूप अस्तो ना धूप, तो विस्तो धूप डाल करके बड़ा सुगंध, और वो धूप लेकर के दो बहनें पहले आती थी और वो हर एक कमरे में जहां सोए हुए वो कमरे में आती थी, बड़ा सुंदर सुगंध आता था और वो सारा धुआं ये वो। फिर वो बहने बाहर जाते ही फिर बाबा आता था, जैसे अव्यक्त बाबा आ रहा है, जैसे वातावरण अव्यक्त हुआ है, फिर बाबा आता था। और बाबा आने के बाद हर एक बिस्तरे के पास जाता था और जाकर के देखता था कि हर एक बच्चे को नींद आई है। अगर कोई इस अंग से उस अंग पर आता था, अगर लुढ़क जाता था, तो बाबा उसको बिठाते थे, बच्चे क्या नींद नहीं आ रही है, क्या दिमाग में दर्द हो रहा है, क्या पेट में तकलीफ है क्या, वो बाबा पूछता था। अगर कुछ तकलीफ है तो दवा भी बाबा जाने के बाद भेजता था। बच्चे को नींद आई या नहीं आई, हाँ, ये भी बाबा देखता था। ऐसी पालना करेगा कौन, आज की दुनिया की तो बात ही नहीं है। तो इतनी पालना ये शिव बाबा करते थे, बच्चों की बाप दादा करते थे। वैसे कुमारों की घर में भी कोई इतनी पालना तो होती नहीं, समझा। फिर भी स्वतंत्र है। और इस दुनिया, ये कलयुगी मायावी दुनिया के अंदर हम कुमार बनकर के रहे हैं, ये बहुत बड़ी भाग्य, बहुत ऊंचे भाग्य की बात है। आप गृहस्थियों को जाकर के मिलो, कई गृहस्थी मिलते हैं ना, तो क्या कहते हैं, भाई जी बाबा हमको लेट मिला, बाबा हमको लेट मिला, अगर पहले अगर बाबा हमको मिलता ना तो ये शादी के झंझट में गए नहीं होते, समझा। अभी ऐसे अटके है कि बात मत पूछो। इसीलिए आप बहुत परम भाग्यशाली है कि आप स्वतंत्र पंछी है। क्या है, स्वतंत्र पंछी है, कोई भी बंधन आपको नहीं है, नहीं है, और बंधन में जाना भी नहीं है, समझा। अटको लटको नहीं। क्या होता है, एक होता है अटकना और दूसरा होता है लटकना, जा कभी किस पर प्रभावित नहीं होना है। हम अगर पक्के बाबा के कुमार है तो दुनिया के किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर प्रभावित नहीं होना है। भगवान जो है ना, उनकी बहुत नजर होती है। गॉड इज ए जलसी वाइफ, समझा। उसको अपने पति ने दूसरे के साथ बात किया भी वो पत्नी को पसंद नहीं पड़ता है, बोलती क्यों बात किया उसके साथ। ऐसे शिव बाबा का भी है, समझा ना। आप उनकी पत्नी है ना, अगर आपने और किसी के साथ बात किया तो उनको पसंद, और किसी से दिल लगाया तो भगवान को पसंद नहीं होता है। एक बाप मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा प्यार हमारा बाबा के प्रति दिल से अंदर से होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुमारों को बाबा के प्रति भी प्यार चाहिए और अंत तक बाबा के साथ जुड़े रहो। अभी टाइम ही कितना रहा है, अभी संगम युग पूरा होने को आया है, पूरा होने को आया है, अभी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम। आपको समझ में आता है कि साकार में बाबा ने 33 ईयर बिताए, 1/3, 100 साल के संगम युग में 1/3 साकार का पाठ रहा हुआ है और 1/2 माना 50 ईयर अव्यक्त पाठ रहा है। अभी अव्यक्त जैसे क्लोज होने को आ रहा है। अभी तो निराकार रूप बाबा धारण करेगा, निराकार में तो बहुत बेहद की सेवाएं होंगी, जो आपने कभी संकल्प नहीं किया वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी कि बात मत पूछो, ख्वाब में भी नहीं सोचा वो बात प्रैक्टिकल में देखेंगे। निराकार रूप में तो ऐसी बेहद की सेवाएं होंगी कि सभी बाबा के तरफ से भाग भाग करके आएंगे। और स्वयं अभी ये जो सारे मंदिर चल रहे हैं, बालाजी कहो या ये महालक्ष्मी का मंदिर है, तुलजा भवानी, ये पंडरपुर, ये सारे मंदिर में आज बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि निराकार शिव बाबा ने सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिया है, अपनी पावर जो है सभी को थोड़ी 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 दे दी है, और वो ईश्वरीय पावर के आधार से ये सारा चल रहा है। भी साई बाबा का है, वो भी ईश्वरीय शक्ति के आधार से चल रहा है। और जब स्वयं निराकार ईश्वर को प्रत्यक्ष होना होगा तो वो क्या करेगा, सभी की पावर जो है वो सबकी पावर निकाल लेगा। क्यों मंदिर को नहीं दिया, नवशाला देव पावनार नहीं, क्यों देवी शुद्धा पावनार नहीं, मैं लोक मंत्री आता जाऊं का उपयोग है, देव का पावायला तैयार नहीं, का देवाची पावर काढून घेतलेली सगळी इथे जिथे ऑल माइटीच्या जवळ, ऑल माइटी को अपने को स्वयं प्रत्यक्ष करना है, तो वो टाइम अभी बहुत नजदीक आया है। और निराकार रूप में साक्षात्कार के पार्ट होंगे, बहुत बड़े साक्षात्कार होंगे। उस समय जो देवता जिस रूप की यादगार है उस मंदिर में उनका साक्षात्कार होगा। जैसे पंडरपुर का विठोबा है, तो विठल देव जो है, तो जो उनका भगत उनका दर्शन करने को जाएगा तो वहां उनको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा, क्योंकि उनकी वो यादगार है ना। रुक्मिणी के जगह पर मम्मा का साक्षात्कार होगा, तो जो देव जो देवी जिसकी यादगार बनी है भक्तों को, वहां उनका साक्षात्कार होगा। ये निराकार रूप में बाबा का बहुत बड़ा पाठ है, तो वो पाठ भी अभी नजदीक आ रहा है। इसीलिए अभी अभी देखो, आप शुरू में तो हम नहीं थे, शुरू में बाबा ने सारे साक्षात्कार कराए, साक्षात्कार के आधार पर संगम युग की स्थापना हुई है, इन सभी का बलिदान साक्षात्कारों के आधार पर हुआ है। ब्रह्मा भी समर्पित हुए साक्षात्कार के आधार पर हुए, वो कोई ज्ञान सुनकर के ब्रह्मा बाबा ने क्या आत्मा परमात्मा का परिचय लिया था क्या, उनको तो साक्षात्कार से शिव बाबा ने बनाया। तो जो शुरू में साक्षात्कार नहीं देखे हमने, अंत में भी साक्षात्कार होंगे। सतयुग कैसा होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे होगा, पुष्पक विमान कैसा होगा, राज दरबार कैसा होगा, वहां के स्कूल कैसे होंगे, सारा साक्षात्कार हम यहाँ करेंगे। पहले साक्षात्कार से देखेंगे और बाद में सतयुग में जाएंगे, समझा। तो इसीलिए साक्षात्कार का समय अभी बहुत नजदीक है, ड्रामा में वंडरफुल सीन देखने का टाइम अभी बहुत नजदीक है। इसीलिए जो हमने बाबा का हाथ पकड़ा है वो हाथ को क्या करने का है, पक्का पकड़ करके रखने का है। और लास्ट तक बाल ब्रह्मचारी का सर्टिफिकेट फिक्स करना है, समझा। अभी ब्रह्मचारी रहेंगे कितना साल, और 5-6 साल ब्रह्मचारी रहने का, और टाइटल क्या मिलेगा, संपूर्ण आयुष्य भर बाल ब्रह्मचारी। कितनी वर्ष ब्रह्मचर्य से पालन के लिए, आम्ही तो 52 वर्ष ती धारणा करते, ते आता जे एक वर्षाचे कुमार आहे त्यांना किती पालना करायची धारणा, 5 वर्ष राहायचं बस, आणि टायटल घ्यायचं बाल ब्रह्म, अखंड बाल ब्रह्मचारी, समजा। आणि पालना किती केली, 4 वर्ष केली, तर हे टायटल सोडायचं नाही। तो बहुत बड़ा लॉटरी है, बहुत बड़ा चांस है, और जो अंत में रहेंगे उन्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए पक्का ब्रह्मा कुमार बन करके रहने का है। और दूसरी बात, अगर ब्रह्मा कुमार ही बनने का है, जब मेरे सामने शादी का पेपर आया, कि हर कुमार के सामने आता है, तो मुझे ऐसे मोमेंट आ गई कि अभी ये करने का या ये करने का, ये करने का या ये करने का, बहुत प्रेशर चारों तरफ से, समाज का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, बहुत माँ बोली नहीं तो मैं जान दे दूंगी फलाना, क्या क्या होता है। माँ तो आई से टाइम जान लेकर की आती है, खटमल की दवा पीऊंगी, ऐसा करूंगी, ऐसी बातें, इतना प्रेशर प्रेशर आ जाता है कुमार के ऊपर कि बात मत पूछो। तो ऐसा टाइम आ गया, समाज का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, सबका कि करना ही चाहिए करना। उस समय मैंने क्या संकल्प किया आपको बताता हूं। उस समय हमने ये संकल्प किया कि अगर ब्रह्मा कुमार बनने का है, समझा, अगर कुमार जीवन जीने का है तो कुछ करके दिखाओ। कुमार वह जो कमाल करके दिखाए। ब्रह्मा कुमार बनाई थे ना, तैसे लुंगा सुंगा ब्रह्मा कुमार बनू रखा, समझा ना, कहीं तरी महावीर बनून दाखवा, कुछ करके दिखाओ, समझा ना। ऐसे गली बड़ा फिर तो एक विचारत नहीं का कुडमुडीत ब्रह्मा कुमार काय काम है, चांगले हाईवे गाठा, समझा ना, बड़ी बड़ी सेवाएं करो, हाँ, विशाल सेवाएं करो, ऐसा कुछ विशेष करके दिखाओ कि सगळ्या गावाचं लक्ष गेलं पाहिजे का, हा काहीतरी याने करून दाखवलं असं। नाहीतर ब्रह्मचारी आणि अविवाहित याच्यात फार अंतर आहे, समजा। अविवाहित म्हणजे काय, ज्याचा विवाह नाही झाला त्याला कोणी मिळालंच नाही म्हणून बिचारा अविवाहित राहिले। अविवाहित आणि बाल ब्रह्मचारी मध्ये फार फरक, आणि अविवाहित लोकांना पुण्यात खोलही देत नाही। कारण काय आहे, का ते डोक्यात थोडेसे सरकलेले असतात, समजलं। तर ब्रह्मचारी आणि अविवाहित मध्ये फार अंतर आहे। मग आपण ब्रह्मचारी दिसलो पाहिजे ना, अविवाहित असता कामा नये, तसे दिसता कामा नये, काहीतरी चेहऱ्यावर चमक, कार्यात काहीतरी विशेषता दिसायला पाहिजे, चार लोकांमध्ये चमकून उठायला पाहिजे, तुमचं कार्य काहीतरी दिसलं पाहिजे समाजाला, गावातल्या लोकांना, सगळ्यांना, आजूबाजूच्या लोकांना वाटलं पाहिजे की जीवन बनवलं तर यांनीच बनवलं, आपण तर पस्तावलो हे प्रपंच करू, समजलंय। असा आदर्श ब्रह्मा कुमार बनायचं, काही कमाल करून दाखवा। जसे लुंगे सुंगे ब्रह्मा कुमार बनून काय उपयोग नाही, त्याच्यापेक्षा आपली शादी करून चार बच्चेचे बाप झालेलं बरं। इसलिए जी रे, समजा ना, आज या देशातल्या म्हणजे लाखो लोकांची अशी अवस्था आहे, इसलिए जी रे हे की मर नाही रे हे, काय ते जीवनात अर्थ आहे का? तशा प्रकारे अलौकिक जीवनामध्ये सुद्धा उगाच कसं तरी चाललंय, काहीतरी कुणीतरी धक्का मारून आणतंय मुरली ऐकायला, असं काय काम असं, समजलं ना। कुमार फूर्त असायला पाहिजे, काय असायला पाहिजे, फूर्त असायला, सेवा सांगायला लगेच हजीर, हनुमान जैसा कुमार होना चाहिए। महावीर उसको कहते हैं, हनुमान की क्या विशेषता थी, राम ने कहा और हनुमान ने किया, या त्याने सांगितलं का लगेच तयार करून काम करून पुन्हा हनुमान हजर राहायचे। कुठे राहायचे, रामाच्या पायाजवळ बसायचे, डोक्यावर नाही, समजलं ना। नाही तर कुमारांचं काय आहे की ते सेवा करता 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 त्यांना वाटतं की हे सेंटर मीच चालवतोय, माझ्यामुळेच हे सर्व सेंटर चाललेलं आहे। म्हणून निमित्त नेहमी आपल्याला काय समजायचं, निमित्त, जो निमित्त समजते हे वही निर्माण कर सकते हे, अंडरलाईन करून ठेवा, जो निमित्त समजते हे वही निर्माण कर सकते हे। जर का अहम भाव आला की मी एवढी सेवा केली, मी तेवढी सेवा केली, तुम्ही काय करू शकता, करण करावन हार बाबा आहे, करण करावन हार बाबा आहे। तुम्हाला प्रॅक्टिकल अनुभव सांगतो, प्रैक्टिकल अनुभव सुनाता हूं कि ये जो जगदम्बा भवन बना, उनके बिल्डर को बहुत लगन थी कि जनवरी 18 में दादी के हाथ में चाबी देनी है, किसी भी हालत में जनवरी में। 15 मास का सिर्फ पीरियड था सारा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, 15 मास का पीरियड। रात दिन उन्होंने काम किया, रात दिन उनके काम चालू ही रहता था बिल्डिंग का। प्रोजेक्ट जनवरी को दादी के हाथ में चाबी देना, उन्होंने देखा आने वाले तो सभी साधारण है और प्रोजेक्ट तो इतना बड़ा है, करोड़ों का काम है। तो उन्होंने क्या किया था, लास्ट में क्या होता है, खर्चा बहुत होता है जब बिल्डिंग पूरी होती है तो खर्चा बहुत होता है। प्रोजेक्ट एंडिंग में बहुत खर्चा रहता है और करोड़ों का खर्चा था। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला करके कहा कि दशरथ भाई, मैं बोला बालन भाई ये जनवरी में तो पूरा करने का एक काम इतना रहा, कैसा अभी क्या करेंगे, जा कितना खर्चा होगा मेरा, अभी कितना बाकी है खर्चा, ऐसा पूछता था क्योंकि आपने को जमा करने का है इतना कैसा। तो उन्होंने कहा देखो भाई आप ये संकल्प छोड़ दो, ये संकल्प छोड़ दो, कितना खर्चा आने वाला है ये छोड़ दो, मैंने जो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रकम चाहिए, जितना रकम चाहिए वो बाजू को निकाल करके रखा है, वो मैंने बाजू को निकाल करके रखा है। इस हफ्ते में पैसा नहीं है इसलिए किसका चेक वापस नहीं जाएगा, पैसा नहीं है इसलिए कभी भी काम बंद नहीं होगा, एक फिक्स इतना रकम मैंने बाजू को निकाल करके रखा है। और देखो बाबा का कार्य कैसे होता है, करण करावन हार क्या होता है। जब 28 तारीख को दादी को चाबी दिया उन्होंने जगदम्बा भवन की, बहुत खुश हो गए कि बस मैंने राइट टाइम पर दादी के हाथ में जगदम्बा भवन की चाबी दे दी, इतना खुश हो गए, इतना खुश हुए बालन भाई। और जब 29 तारीख को मिले, 29 तारीख को उनकी मुलाकात हुई, तो बात करते करते उन्होंने अनुभव सुनाया बालन भाई ने। उन्होंने कहा कि भाई जी ये सचमुच बाबा का काम है, बोले मैंने इतना करोड़ बाजू को निकाल रखा था कि कभी पैसा कम पड़ता है, कोई पेमेंट के लिए चेक वापस न जाए, इसके लिए मैंने रकम निकाल करके रखी थी, लेकिन शिव बाबा ने एक रुपया भी नहीं लिया, एक रुपया भी नहीं लिया, वैसा का वैसा ही उनका रह गया और बाबा ने अपना जगदम्बा भवन पूरा कर दिया। बाप आखिर बाप है, समझा, बाप आखिर बाप है। तो ये करण करावन हार बाबा बैठा है, समझा, वो सब कर रहा है, हमारा भाग्य बनाने के लिए हमको निमित्त बनाता है, इसलिए हमको सेवा दी जाती है, इसीलिए सेवा में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, कुमार विनम्र होना चाहिए। कुमार कैसे होना चाहिए, नम्रता कुमारों के अंदर अवश्य, अगर नम्रता नहीं है, अगर अंदर अहंकार है ना, अहंकार है तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती, याद रखो। जो जिस वृक्ष को अधिक फल आते हैं वो झुकता है, जा वही झुकता है, झुकना निशानी है कि ये फलों से लदा हुआ वृक्ष है। ताट असेल तो ते एरंडाचं झाड आहे, समजलं, एक वाऱ्याचा लोट आला का लगेच जमिनीवर पडणार, म्हणून संजन तो झुकना चाहिए, झुकना तो जिंदगी की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। अकड़ते कौन है, मुर्दे, जो जिंदा इंसान है ना, समझा, वो कभी अकड़ता नहीं, इसीलिए कभी भी अकड़ नहीं कुमारों को रखनी है, विनम्र स्वभाव, हाजी हाजी करते रहो और अपना पद बढ़ाते जाओ, क्या है सादा मार्ग है क्या, हाजी हाजी करते रहने का और अपना पोस्ट बढ़ते जाने का, ना कभी नहीं कहने का। इस यज्ञ में जिन्हों जिन्हों ने हाजी हाजी कहा है उनकी उन्नति ही हुई है, कोई नीचे नहीं आया, क्योंकि भगवान के सामने हम हाजी कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अंत में भी हाजी कहा, शुरू में भी हाजी कहा। शिव बाबा ने कहा तेरा तन मेरे को चाहिए, हाँ जी। तेरा सारा धन मेरे को चाहिए, हाँ जी। तेरा मन भी मेरे को चाहिए, भले रोज गीता पढ़ते अभी नहीं पढ़ने का, जा मन भी मेरे को चाहिए, हाँ जी। लास्ट में कहा कि मुझे तेरी वतन में जरूरत है, आने को तैयार है, हाँ जी। तो भी ब्रह्मा ने क्या कहा, आने को तयार है। आपल्याला विचारलं का उद्या यायला तयार आहे का वर, तर आपण काय म्हणू, जर अजून दोन चार काम बाकी आहेत बरस, पासबुकही पाहिलं नाही बरेच दिवस, तर ब्रह्मा बाबाने लगेच विचारलं, शिव बाबाने झटका हाजी समजा। तो इस प्रकार से समझा, नम्रता भी होनी चाहिए, हाजी का पाठ भी कुमारों ने बजाना चाहिए, और कुछ ना कुछ निर्माण करते रहो, कुछ ना कुछ नई नई सेवाएं, नए नए सेवा के प्लान बनाते रहो, अनेकों को उमंग देते रहो, उत्साह देते रहो, तो आपको हनुमान कहा जाएगा, तो आपको महावीर कहा जाएगा। तो ऐसी विशेष नई नई सेवाएं करो, अपने स्थिति को भी बहुत ऊंचा बनाओ। फर्स्ट स्थिति एंड देन सेवा, या पहली स्थिति है बाद में सेवा, इसलिए स्थिति को भी कायम पक्का रखो, तो आगे आने वाली अनेक परीक्षाओं में आप क्या होंगे, पास हो सकेंगे और हो जाओ, ऐसा शुभ संकल्प। ओम शांति।